श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। मैं हिंदू नहीं बोलता हूँ, पर जो भाग्य है तो मराठी 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 नहीं मालूम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वैरांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 9 परम गृह्य ज्ञान श्लोक 13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैरीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वे तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, ज्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाते हैं। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होते हैं, उससे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा, आपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भलीभांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें क्षणिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्तों कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, नहीं वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप का प्रवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवस में लगे रहते हैं। महात्मा अनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुनीशभक्तांशीशमीशावतारकं तत्प्रकाशांस तच्छक्ति कृष्णचैतन्यसंगीतम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजान लंबत भुजा कनकावता तो संकीर्तनाय कपितरो कमलायताक्ष विश्रम भरो द्विज भरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते दयतां सुरतां भंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमथ श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा शिव गोविंद देव इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महात्मा शब्द की परिभाषा का व्याख्या करते हैं कि महात्मा कौन है। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त आत्मा का मतलब जीव, सब जीव आत्मा है, जीव आत्मा, और जीव का स्वभाव है भगवान जैसे सच्चित आनंदमय। भगवान जैसे महान जीव नहीं है, लेकिन गुण में जीव भगवान के समान है, लेकिन परिमाण में कोई तुलना नहीं है। भगवान महान है और जीव अणु बहुत ही छोटे हैं। तो जीव का स्वभाव है बहुत ही छोटे, भगवान का मतलब नियंत्रक, और जीव आत्मा सदैव भगवान के अधीन रहते हैं। जब जीव भौतिक संसार में रहते हैं, माया प्रकृति के द्वारा आच्छादित होते हैं, तो वो बद्ध जीव बोलते हैं। और जीव जब आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में रहते हैं, वो मुक्त जीव बोलते हैं। तो जीव का स्वभाव बहुत ही छोटे हैं, तो जीव कैसे महान हो सकते, महात्मा? तो जीव सदैव भगवान के अधीन होते हैं, भगवान से अधीन होते हैं। तो एक जीव आगा स्वीकार करते हैं कि कृष्ण प्रभु है, मैं दास हूं, तो कृष्ण कहते हैं, तो वैसे जीव जो मेरे शरण में आते हैं, तो ऐसे जीव महान होते हैं। तो कैसे जीव महान? भगवान महान है, तो जीव कैसे महान होते हैं? तो यदि भगवान एक जीव को महान मानते हैं, तो भगवान की दया से वो जीव महान होते हैं। जीव तो भगवान जैसे महान नहीं हो सकते, भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं, वे सभी असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि का कार्य करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हा ब्रह्मांड में ब्रह्मांड, इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा का अंदर जगत का रूप एक अंदर जैसे है, और ये अंदर के अंदर ब्रह्मा जी है, तो इसलिए जगत का दूसरा नाम है ब्रह्मांड। और जगत का सृष्टि कार्य करते हैं ब्रह्मा। हर ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। तो सामान्यतः ऐसे ही कहना है शास्त्र में कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन मूल करता है भगवान विष्णु जो कृष्ण है। कृष्ण का एक रूप है विष्णु, और इनकी शक्ति के द्वारा और इनके आदेश और इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और महादेव शंकर जी संहार करते हैं। तो भगवान महान है, और जीव कभी भी सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य नहीं करते हैं, वो भगवान का कार्य है। और भगवान के लिए कार्य नहीं होते, इनकी लीला है। भगवान के लिए कभी भी श्रम नहीं होते हैं। तो जीव भगवान जैसे महान नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर कोई जीव स्वीकार करते हैं कि मेरी कृष्ण महान है, और जीव कृष्ण के सेवक है, तो कृष्ण का विचार में वो जीव महान होते हैं। जी कभी भी भगवान जैसे महान नहीं हो सकते, लेकिन बाध्य और मुक्त जीवों की तुलना में जो मुक्त है भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करके मुक्त होते हैं, तो वो जीव महात्मा है। तो ये महात्मा शब्द की परिभाषा है। महात्मा नहीं है केवल लंबा दाढ़ी वाला या जादू दिखाने वाला, वो महात्मा का लक्षण नहीं है। महात्मा है एक नम्र शुद्ध समर्पित कृष्ण भक्त, यही महात्मा है। तो ऐसे सोचा जब आया था यहाँ पर इस कॉलोनी में कि आप मुझको इतना सुंदर स्वागत देते हैं, बहुत उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं, फिर सोचा था कि मैं योग्य नहीं हूं ऐसा स्वागत के लिए, फिर मंच पर आके और आसन ग्रहण करके आप मेरे के बारे में बोले परम पूज्य, तो मैं सोचा था कि मैं परम निंद्य पूज्य नहीं हूं, तो क्यों ऐसा मेरे बारे में ऐसे बोलते? तो सोचा था कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन ऐसे वर्णन करते हैं मुझको, प्रशंसा करते हैं, मैं योग्य नहीं हूं ऐसा प्रशंसा के लिए, लेकिन श्री प्रभुपाद अवश्य ही पूर्ण प्रशंसनीय, वास्तव में परम पूज्य कौन है? कृष्ण, यही भगवान है। लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं मन भक्त फूल जाता दिखा। श्रीमद भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव गीत में जिसमें श्री कृष्ण जैसे कि एक भागवत गीता है, श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को, तो वैसे भी श्रीमद भागवत में और विस्तृत रूप में श्री कृष्ण का उपदेश इनके एक दूसरे परम प्रिय भक्त उद्धव को। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नमस्कारो सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो। तो कैसे श्री कृष्ण की पूजा करना है, इनकी उपासना करना है और विस्तृत रूप में वर्णन है उद्धव गीत में। तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, तो मेरे लिए मंदिर बनाओ, मेरा श्री विग्रह स्थापन करो, मुझको भोग अर्पण करो, मेरे लिए पोषक बना के अर्पण करो इत्यादि। तो श्री कृष्ण की पूजा विधि जो श्री कृष्ण स्वयं व्याख्या करते हैं, तो वो पूजा विधि में श्री कृष्ण और कहते हैं मद भक्ता पूजा वाली का, तो मेरे पूजा करना चाहिए लेकिन उससे अधिक उससे और महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा। ये भगवान की भक्ति का एक रहस्य है कि श्री कृष्ण इनकी इनके भक्तों की पूजा करने से और संतुष्ट होते हैं इनकी स्वयं की पूजा से। ऐसा कैसे होते हैं, तो थोड़ा विचार करना चाहिए ना। एक विचार है कि अधिक लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वास्तविक प्रेम से नहीं करते, एक व्यापार जैसे करते हैं कि हे भगवान मैं आपको कुछ फल फल धूप इत्यादि अर्पण करता हूं, तो आप ना देखे आपके पास सब कुछ है तो मुझको वर दो, मुझको ज्यादा पैसा दे, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते हो, या ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपया चाहते हैं, तो भगवान आप सर्वशक्तिमान है तो आप ऑपरेशन नहीं करके मुझको ठीक करवा दो, या अभी मेरे पास काफी पैसा नहीं है, अंबानी भी भगवान की पूजा करते मेरे पास काफी पैसा नहीं है, भाई को कुछ नहीं देना चाहिए, हे भगवान मुझको और दो। तो ये एक प्रकार की पूजा है लेकिन वो एक्चुअली एक प्रकार का व्यापार है। मैं फल फल जल भोग इत्यादि अर्पण करता हूं लेकिन आशा है कि ऐसी पूजा करने से भगवान मुझको बहुत भौतिक सुविधा देंगे, तो प्रेम से पूजा नहीं है, वो पॉलिटिशियन की पूजा जैसे। तो मंत्री के पास जाना है तो आप इतना अच्छा है और तो सामने चुनाव है आपके लिए कुछ डोनेशन है और मेरा कुछ भी करना है तो आप जरा सा साइन कीजिए मेरा काम करो, तो ठीक है तो मुझको कितने देते हैं पार्टी के लिए, मुझको कितना खिलाते हो, 1,00,000 रुपया ठीक है मैं साइन करता हूँ, तो पॉलिटिशियन को सम्मान देना है, पूजा जैसे करना है, लेकिन स्वार्थ के लिए है। तो अगर हम भगवान की पूजा करते पॉलिटिशियन की पूजा जैसे, तो स्पष्ट है कि वो प्रेम से पूजा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है बिजनेस है। तो ऐसे बहुत व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए, लेकिन भक्तों की पूजा कौन करेंगे इस बात के लिए? क्योंकि भक्तों वास्तविक सत्य का प्रचार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक वास्तविक साधु वास्तविक भक्त के पास आते हैं और बार मांगते हैं आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो मुझको आशीर्वाद दे जैसे कि मेरी आर्थिक स्थिति और अच्छी बन जाए, तो वो साधु स्पष्ट कहेंगे कि तुम क्या मोल करो, पैसा मिलने से क्या फायदा होगा, भगवान का भजन करो, इस जीवन नश्वर है और ज्यादा दिन यहां पर नहीं रहोगे। वास्तविक साधु ये वास्तविक सत्य कथा कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। तो हर जन्म में 84 लाख प्रकार की जन्म होते हैं और हर जन्म में हम अवसर मिलते हैं इंद्रिय सुख के लिए। सूर्य जो धरती करते हैं उसको उसमें बहुत स्वाद मिलते हैं, वो ये बहुत अच्छा है, गरम थर्जन। तो हर जन्म में हम अवसर मिलते हैं इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन केवल मनुष्य जीवन में अवसर होते हैं कृष्ण भक्ति करने, कृष्ण भक्ति जिससे हम संसार चक्र से मुक्त होते हैं और भगवान के पास जाना है। तो इसलिए मनुष्य जीवन इंद्रिय सुख के लिए व्यतीत नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन श्री कृष्ण का इंद्रिय सुख का प्रयास में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही भोगता है, हम भोगी नहीं है। अगर हम प्रयास करते हैं भौतिक सुख के लिए, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है सेवक, कृष्ण के सेवक। अगर हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं फिर हम सुखी हो सकते हैं, और अगर प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए, हम कभी भी संतुष्ट सुखी शांत नहीं हो सकते। तो ये जीवन का रहस्य है और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन का सब प्रयास करना चाहिए और इसके अनुसार कृष्ण केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ऐसे प्रचार वास्तविक साधु करते, वास्तविक साधु आशीर्वाद नहीं देते हैं भौतिक विकास के लिए, वास्तविक साधु आशीर्वाद देते हैं आध्यात्मिक विकास कर। तो कौन ऐसे साधु के पास आएंगे? तो बहुत ढोंगी है जो बहुत ठीक है मैं आशीर्वाद देखता हूं, तुम बड़ा व्यापारी बन जाएगा, तुम सक्सेसफुल होगा, लेकिन वास्तविक साधु भक्त सदगुरु, सदगुरु भक्त एक ही सक्सेसफुल जीवन, सार्थक जीवन का मतलब यद्यत मान निवार तंत्र तद धाम परम मम। सार्थक सफल जीवन का मतलब इस जीवन में कृष्ण भक्ति करना, जैसे कि हम कृष्ण के पास जाएंगे और इस दुखमय भौतिक संसार में कभी भी वापस नहीं आएंगे, यही सफल सफल। और ये सब बड़ा धनी बन बनना या बड़ा क्रिकेट प्लेयर बनना या सिनेमा स्टार बनना सब फालतू बेकार, उसमें क्या है? कुछ नहीं, वो क्षणिक सफलता और निरर्थ सफलता, वो वास्तविक सफलता है शुद्ध कृष्ण भक्त बनना। तो कौन व्यक्ति ऐसे साधु के पास आएंगे, ऐसे साधु जो यही आशीर्वाद देते, तो क्या स्वामी जी मुझको आशीर्वाद दो, किस लिए दानं देहि स्वस्थं देहि? तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम धनी नहीं होगी और जो भी धन है वो सब भी खत्म होगा। तो कौन आएंगे ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? तो कोई नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। तो ऐसे साधु है तो हमारा संसार सुख सब खंडन करेंगे, लेकिन वास्तविक साधु ऐसा प्रचार कहते हैं कि संसारिक सुख तो कोई सुख नहीं है, वो खाली दुख है। दुख का कारण जितने भी इंद्रिय सुख हम इस जीवन में कहते हैं तो इतना दुख होगा अगले जीवन में। ऐसे होते हैं भौतिक प्रकृति के कठोर नियम। तो ऐसी बात बोलने तो ज्यादा सुनने वाले नहीं है, लेकिन जो सुनते हैं तो जीवन का परम वर मिल सकते हैं। इसलिए ऋषि कृष्ण कहते हैं मत भक्ता पूजा अधिका, मेरे भक्तों की पूजा करना, मेरी पूजा करने से और महान है। देवी पार्वती भी ऐसे जवाब मिले इनके पति महादेव से। पार्वती एक बार पूछी शंकर जी से कि हम देखते हैं संसार में बहुत प्रकार की पूजा होते हैं, आपकी पूजा, मेरी पूजा, विष्णु पूजा, सरस्वती पूजा, वसंती पूजा, और आजकल आधुनिक प्रकार की पूजा भी साईं बाबा। तो पार्वती का प्रश्न था तो सभी प्रकार की पूजा में कौन सी श्रेष्ठ है? तो जवाब में महादेव बोले आराधनानं सर्वेशं विष्णुराराधनं परम। तो सभी प्रकार की पूजा में आराधना में परम है विष्णु आराधन। इसका मतलब सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु, और वास्तव में विष्णु एक देवता नहीं है, वे देवदेव है। देव का मतलब जो आराध्य है, और देवगुण से आराध्य है देवदेव कृष्ण।
तो विष्णु आराधना परम आराधना है। देखिए भगवान शंकर जी और भी बोले कि उससे विष्णु रूप पूजा से और परम है। तस्मात् परतरं देहि तदीयानं समर्चनं, विष्णु की पूजा, विष्णु जैसे इनके भक्त की पूजा करना विष्णु पूजा से शेष। क्यों? तो एक बात है कि जो विष्णु और विष्णु के भक्तों की पूजा करते हैं, दोनों करते हैं, जानते हैं कि भगवान की भक्त भगवान जैसे पूजा है। तो नहीं है कि भगवान की भक्त प्रचार करते हैं मैं भक्त हूं, मैं महात्मा हूं, मेरी पूजा करो, और भगवान की पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्ता पूजा भागी का। तो ऐसा नहीं है, भगवान की भक्त प्रचार क्या प्रचार करते हैं, सावधान परित्यजा माने कम शरणम। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, तो सभी प्रकार की अन्य पूजा और धर्म त्याग करके सिर्फ मेरी पूजा करो। और भगवान के भक्त तो एक ही प्रचार करते हैं, सावधान परित्यजा माने कम शरणम। सभी प्रकार की अन्य पूजा चढ़ के सिर्फ कृष्ण की पूजा करो। लेकिन पूजा विधि में श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा विधि में, कृष्ण पूजा विधि में एक मुख्य अंश है मेरे भक्तों की पूजा करना। अगर हम केवल कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण नहीं मानते हैं कि ये मेरी सही पूजा है। तो अगर साथ ही साथ मेरे भक्तों की पूजा करनी है तो वो सही पूजा है। तो पूजा विधि में पहले गुरु पूजा करना है और उसके बाद कृष्ण की पूजा। तो इसका और एक मतलब है कि श्री कृष्ण पूजा ग्रहण नहीं करते हैं अगर इनकी पूजा के पहले इनके भक्त की पूजा करना है। तो सब भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल मेरी भक्ति करते हैं तो मैं वो भक्ति स्वीकार नहीं करता। तो मेरे भक्तों की भक्ति करना है फिर मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे भक्तों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से मेरे प्रिय है मेरे भक्त। उद्धव गीता में भी श्री कृष्ण उद्धव को बोले कि न तथा मैं पुरातर आत्मयोन न शंकर न छ संकाशन न श्री न श्रेय न छ यथा भगवान। हे उद्धव, नतचामी प्रियतमा आत्मयोनि, आत्मयोनि ब्रह्मा, ब्रह्मा है श्री कृष्ण का संतान। और ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? तो भगवान नारायण का नाभि से वो पद्म जो आया था, वो पद्म में ब्रह्मा जी का जन्म था। इसलिए ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का, कृष्ण नारायण का संतान है। और श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे आत्मयोनि है, मेरा पुत्र है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी मेरा पुत्र है इसलिए मेरा प्रिय है। आत्मयोनि और शंकर जी शिव शिव का फायदा हुआ ब्रह्मा जी का कपास, तो नारायण का प्रभुत्व नाती। और संकर्षण बलराम श्री कृष्ण का भाई है, न च संकर्षण न श्री, और श्री लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे प्रिय है, ब्रह्मा शंकर संकर्षण श्री सब मेरे प्रिय है, लेकिन इतने सब प्रिय नहीं, और मैं स्वयं तो सब खुद को प्रेम करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सब मेरी प्रिय है और मैं भी मेरा प्रिय है, लेकिन उद्धव तुम जैसे मेरे प्रिय नहीं है, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। तो भगवान के शुद्ध भक्तों श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय है, और भागवत में भी एक कहानी, कहानी मतलब एक घटना है, वास्तविक घटना है कि एक बार दुर्वासा मुनि परम योगी दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश भगवान नारायण के शुद्ध भक्त को महान अपराध किया। तो अम्बरीश महाराज तो खिलाफ नहीं किए, लेकिन भगवान नारायण इतना गुस्सा हो कि भगवान नारायण इनके सुदर्शन चक्र भेजा योगी दुर्वासा मुनि का हत्या करने के लिए, मार देने के लिए। तो दुर्वासा मुनि भाग गए और शिव के पास गए हैं, ब्रह्मा के पास गए हैं शरण के लिए, और ऐसे बहुत देवताओं के पास गए हैं, लेकिन सब बोले कि आपको शरण नहीं ले सकते, भगवान का नारायण की इच्छा लंघन करना संभव नहीं है हमारे लिए, हमारी शक्ति नहीं है भगवान की इच्छा खंडन करना। तो अंत में दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के पास गए और माफी मांगता था, लेकिन भगवान नारायण बोले कि मैं भी क्षमा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्तों के चरण में अपराध किए। तो क्या है इस प्रसंग में भगवान नारायण बोले साधव हृदय माहम साधु हृदय त्वहम मरण्यते न जानन्ति नाहं ते गो मनोगति, कि मेरे भक्तों मेरे हृदय में है और मेरे भक्तों के हृदय हूं, मेरे भक्तों मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, क्योंकि मेरे भक्तों मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते और मेरे भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो अगर क्षमा चाहते हैं तो महाराज अम्बरीश के चरण के पास जाके मांगो, मेरा सामर्थ्य नहीं है क्षमा करना। तो ऐसे है भगवान और भक्तों में प्रेम संबंध इतना घना है, इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि भक्त हम कुछ भी नहीं जानते कृष्ण के अलावा, और भगवान कृष्ण जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक है, भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों से प्रिय है कृष्ण के प्रिय है यशोदा माई, नंद महाराज, उद्धव। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों परम पूज्य है, क्योंकि कृष्ण स्वयं इनके भक्तों की पूजा करते हैं। नारद मुनि कृष्ण के परम पूज्य प्रेमी भक्त, तो जब द्वारका आए थे कृष्ण के राजमहल राजप्रसाद में आए थे, तो कृष्ण स्वयं नारद मुनि की पूजा की। तो कृष्ण कभी कहते ही नहीं कि मेरे से पूज्य है मेरे भक्त, लेकिन कृष्ण स्वयं इनकी इनके भक्तों की पूजा करते हैं। शिशु रूप में भगवान, तो भगवान तो शिशु नहीं है, लेकिन शिशु रूप लगते हैं इनके भक्तों का प्रेम वायदान के लिए। तो शिशु रूप में नंद पुत्र हरि नंद महाराज के पादुका लेके जाते इनके सिर पर और नंद महाराज के चरण पर अर्पण करते हैं। तो वे भगवान है, और सब शुद्ध भक्त कृष्ण के चरण पूजा करते हैं और कृष्ण नंद महाराज के चरण पूजा करते प्रेम से। ये प्रेम संबंध है कि श्री कृष्ण मानते मेरे भक्त मेरे से और बड़ा है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त परम पूज्य है, और इस दुखमय संसार में अगर कोई व्यक्ति समझ सकते हैं कि आराध्य है भगवान और भगवान की भक्तों भी आराध्य है, और कृष्ण की भक्ति के साथ इनके भक्तों की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति भक्ति नहीं होती है अगर कृष्ण इनके भक्तों के साथ पूजित होते हैं, तो वो भक्ति अपूर्ण होते हैं, वो वास्तविक भक्ति नहीं होती है। तो ऐसे सोचो जब आया था कि आप मुझको इतना अच्छा स्वागत देते हैं, मैं योग्य नहीं हूं, परोपार्थ परम पूज्य है, क्योंकि वे कृष्ण की शुद्ध भक्त है। तो फिर भी सोचो कि हाँ ऐसे मुझको स्वागत देना उचित है, अगर नहीं किया था तो दोष था, उचित है क्योंकि मैं अनाधिकारी होने के भी प्रयास करता हूं प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में इनकी सेवा में इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने। तो आप ऐसे कहते कृष्ण और इनके शुद्ध भक्तों की पूजा और सेवा करें, निष्कपट सेवा करें। निष्कपट एक शब्द है, इसका मतलब है शुद्ध हृदय के साथ, नहीं है कि हम धूमधाम पूजा करते हैं लेकिन उसका कारण है कि हम भगवान और भक्तों से कुछ भौतिक स्वार्थ का भौतिक स्वार्थ की आशा करते हैं कि हम भगवान और भगवान की भक्तों की पूजा करते हैं और ऐसे करने से हमें आशा करते हैं कि हम आशीर्वाद मिलेंगे भौतिक सुविधाओं के लिए। तो वो कपट से रहोगे और निष्कपट से रहे अन्या विराशिता शून्य ज्ञान काम आदि नामृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, यही उत्तम भक्ति है जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं है भौतिक स्वार्थ के लिए या भगवान की अंग ज्योति में लीन हो जाना, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। भक्ति का मतलब सब कुछ करना है केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता है, यही प्रेम संबंध है। तो यही वास्तविक भक्ति है, ये मनुष्य जीवन की संसिद्धि है और ऐसी भक्ति प्राप्त करना मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है। तो ये बहुत महान विषय है, गुण में महान और परिणाम में भी महान है। अभी हमारा समय सीमित है, भगवान और भगवान के भक्तों के गुण असीम है अपार। तो अभी संक्षेप में मैं प्रयास किया था, भगवान भगवान के भक्तों और भगवान की भक्ति की महत्व के बारे में कुछ बोलना निश्चित रूप में समझने के लिए ये भगवद गीता यथारूप लेना और पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भागवत जो जगत में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है इसको भी पढ़ना चाहिए। वास्तव में भगवद गीता भूमिका है श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, जिसमें विस्तृत रूप में ये मधुर भक्ति का वर्णन है। तो ये मेरा अनुरोध है, मैं अभी तीन बार आया हूँ, ऐसा लगता है हर साल मैं एक बार आऊंगा आशा है। तो एक ही बात बोलने के लिए, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम गाओ, कृष्ण सेवा करो, आपका दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म श्री कृष्ण की भक्ति में अर्पण कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी अगर किसी के प्रश्न हो इस भक्ति विषय के प्रसंग में तो कॉर्डलेस माइक है, तो अभी थोड़ा सामने आके माइक से पूछे।
चाय पीने से हमारा काम जल्दी हो जाता है, किंतु चाय ना पीने से हमारा सुबह और शाम को काम नहीं होता, इसका उपाय?
तो मैं क्या कहूंगा, ज्यादा चाय पियो। आपका काम होगा लेकिन आपका भवबंधन होगा। तो आप सोचिए वो स्मृति कहां से आते हैं, जीवन जीव से आते हैं। बाधा वास्तव में चाय पीना है, दक्षिण भारत में कॉफी पीना है, ज्यादा ज्यादा चाय नहीं पीते लोग, ज्यादा कॉफी पीते। लेकिन जीवन जीव से आते हैं, आदि हमारा संबंध नहीं, हम जीव है लेकिन संबंध नहीं है वो जीवन का स्रोत के साथ। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं हम ज्यादा जीवन ज्यादा शक्ति मिलते हैं, इसलिए चाय हमारे चाय पीने का कोई आवश्यकता नहीं। हम ज्यादा आप मत सोचिए कि साधु जीवन आलसी जीवन है, हम आपसे ज्यादा काम करते हैं चाय नहीं पीने से। हम 4 बजे सुबह उठते हैं और दिन भर रेस्ट करते हैं भगवान कृष्ण की सुखमय सेवा में, और हम कभी भी छुट्टी नहीं लेते। हाँ सुबह से रात तक हम कृष्ण सेवा करते हैं। तो अगर हम कृष्ण सेवा करते हैं तो चाय पीने कोई आवश्यकता नहीं होगा, उसमें रुचि भी नहीं होते, उसके क्या जरूरत है। तो जब चाय पीने की इच्छा आते हैं तो जोर से हरे कृष्ण बोलो और यजमाला जाप करो, फिर चाय पीने का आवश्यकता नहीं हो। कृष्ण भक्ति से स्मृति अगर नहीं हो तो चाय कॉफी सिगरेट तंबाकू ये सब ये सभी चीजों के लिए इच्छा नहीं रही। हरे कृष्णा।